श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 26। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान ने बताया कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोक में जाते हैं, पितरों की पूजा करते हैं पितरों के लोक में जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के लोक में जाते हैं, और जो भगवान के पास भगवान की पूजा करते हैं वो शाश्वत रूप से भगवान के पास रहते हैं। हमने एक तो एक चीज ये सीखी कि ऐसा नहीं है कि तुम किसी की भी पूजा करो और वहीं पहुंच जाओगे। ये धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए ना सुननी चाहिए, क्योंकि प्राय लोग इस प्रकार की प्रचार करते हैं और ये नहीं बताते कि कहां पहुंच जाओगे, वहीं पहुंच जाओगे वहीं पहुंच जाओ करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि हम कहां पहुंचेंगे। तो भगवद गीता के अनुसार कम से कम हम समझते हैं कि ऐसा नहीं है, जो व्यक्ति जिसकी पूजा करता है वो उसी के ग्रह को प्राप्त करता है। तो अब भी आएगा बात कि क्या भगवान कृष्ण की पूजा करना बड़ा मुश्किल है। प्रहलाद महाराज के अपने जब अपने मित्रों को प्रचार कर रहे थे तब भी ये बात उठती है कि क्या भगवान को संतुष्ट करना, भगवान तो इतने बड़े हैं क्या उनको संतुष्ट करना बहुत मुश्किल है, क्या हमको बहुत 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 बड़ी सामग्री लेके लाना पड़ेगा उनके लिए, तो नहीं। तो इसमें श्लोक आज हमको देखेंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरहतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत बड़ा है और जरूर इसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री को देखेंगे और उसके बाद फिर प्रभुपाद के तात्पर्य को लाइन बाय लाइन डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। एक बात शुरू करते हैं आचार्य, वो कहते हैं कि देवताओं की उपासना करना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा विधि विधान होते हैं इसमें, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ऐसा मेरे भक्तों के लिए नहीं है। एक बात जिसमें महत्वपूर्ण आई है और वो शब्द आया है, जो आप देख सकते हैं दो बार आया है, और वो शब्द है भक्त्या और भक्ति उपहृतम। तो अब एक प्रश्न को श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती उठाते हैं कि दो बार ये भक्त्या भक्त्या करने का क्या अर्थ है, क्यों बोल रहे हैं? भक्त का मतलब होता है भक्ति के साथ, तो अगर सीधे सीधे इसका अर्थ हम समझें तो उसका अर्थ होगा कि मैं, यानी भगवान कह रहे हैं मैं स्वीकार करता हूं जो भक्ति के द्वारा दिया जाता है, जिसके पास भक्ति होती है, जो मैं एक व्यक्ति के भोग को स्वीकार करता हूं जो भक्ति से दिया जाए, कोई भी व्यक्ति जो भक्ति से देता हो, तो ये एक प्रकार का पुनरावृत्ति लगती है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, आचार्य समझाते हैं, भक्त्या का अर्थ है यहां पे भक्त्या सहित, भक्ति के साथ, अर्थात जिस व्यक्ति के हृदय में वास्तविक भक्ति है, सच्चा भक्त है, वो भक्ति से जब मुझे देता है, प्रेम से कुछ देता है, श्रद्धा से देता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। तो एक सच्चा भक्त चाहे एक पत्र दे, चाहे एक फूल दे, चाहे फल दे, जल दे, भगवान स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ क्या है? भगवान ऐसे लोगों से स्वीकार नहीं करते जो भगवान के सच्चे भक्त नहीं है, जो बस थोड़ा सा कुछ भक्ति का हल्का फुल्का भाव आया और बस भगवान को भोग लगाने चले गए, नहीं, उनका पूरा विश्वास नहीं है कि वो कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण उनके शाश्वत स्वामी हैं। तो इस प्रकार के लोगों से भगवान उनका बनाया हुआ भोग या उनके द्वारा अर्पित किया भोग भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, जिनको भगवान पर विश्वास नहीं। और एक काम चलाओ, थोड़ा बहुत कुछ भाव है उसकी वजह से भक्ति करें, आप कुछ अर्पित कर रहे हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो उनका भक्त उनको देता है उसको वो एक विशिष्ट तरीके से अश्नामी, अश्नामी का अर्थ है उसका आस्वादन करते हैं। यहां पे अश्नामी का अर्थ खाना हमेशा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान फूल को सूंघते हैं और उसको खाते हैं, खाद्य सामग्री उसको खाते हैं। अश्नामी का अर्थ है भगवान उसका आस्वादन करते हैं और वस्तुतः भगवान आस्वादन करते हैं उस भक्ति के, उस व्यक्ति के हृदय के प्रेम को, इस प्रेम के कारण वो भगवान को दे रहा है। तो अब ये व्यक्ति कहेगा, व्यक्ति कहेगा कि इस प्रकार की अर्पण है भगवान को, तो ऐसा नहीं है कि वो भगवान को अर्पित कर रहा है क्योंकि किसी ने कुछ उसे बोला है करने के लिए, हाँ भाई तुम अर्पित करो तो हम अभी अर्पित कर रहे हैं, अपितु वो भक्ति उपहर्तम यानी प्रेम से भगवान को समर्पित करता है। अब इसका एक और अर्थ है कि अगर भक्त का शरीर अशुद्ध है तो भी भगवान स्वीकार नहीं करते, यानी विधि विधानों का पालन करना चाहिए। और शब्द आया है इसमें प्रयतात्मनः, मतलब वो अपने शरीर को शुद्ध करके स्नान करके ही भगवान के लिए खाना बनाएगा, भोग बनाएगा। और इसी कारण से अगर स्त्रियों का स्त्रियां रजस्वला होती हैं या उस समय में होती हैं, आचार्य ऐसा बता रहे इसलिए मैं बोल रहा हूं, तो उनको भोग नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो अशुद्ध होती हैं। और किसी कारण से अशुद्ध अवस्था में हो तो भगवान के लिए भोग बनाना नहीं चाहिए और उस प्रकार से भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान यहां पर स्पष्ट आचार्य बता रहे हैं। और प्रेतात्मना का एक अर्थ ये भी है कि उसका मन शुद्ध है, और मन शुद्ध होने का अर्थ अगर बताते हैं कि अगर काम और क्रोध है भी कुछ किंचित मात्रा में, इसका अर्थ ये नहीं कि वो भगवान को अर्पण नहीं कर सकता है, अपितु भगवान को सेवा, भगवान की सेवा की भावना हमेशा बनी रहती है और इस दृष्टि से उसका हृदय शुद्ध रहता है, शुद्ध माना जाता है कि वो सेवा की वृत्ति को छोड़ता नहीं है, कृष्ण की सेवा करनी ही है, ये भावना रहती है, ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। परीक्षित महाराज कहते हैं इस संबंध में, धौतात्म पुरुषः कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, कि जिस व्यक्ति का हृदय भक्ति के तरीके से एक बार शुद्ध हो चुका है तो कृष्ण के चरणों को कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये चरण भगवान के चरण उसको उस प्रकार से संतुष्ट करते हैं जैसे कोई यात्री बहुत कठिन यात्रा करके अपने घर में सुख प्राप्त करता है, इस प्रकार से। तो यहां आचार्य समझा रहे हैं कि मन की शुद्धि का एक सबसे बड़ा लक्षण ये है कि भक्त कभी भी भगवान की सेवा को छोड़ता नहीं है, और अगर काम और क्रोध के कुंचित मात्र दोष हैं भी तो उनको एक सांप जिसके दांत नहीं है उसकी दंश की तरह मानना चाहिए, वो समय आने पे पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को देखेंगे, नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तत्पर रहे। देखिए श्रील प्रभुपाद जी कितना सुंदर तरीके से आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बात को बता रहे हैं। देखिए पहली बात ये, आप उसको देख लीजिए, कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ है ऐसा नहीं है कि वो टेम्परेरी भक्ति कर रहा है, टाइम पास भक्ति से कहना चाहिए, नहीं, वो उस बात में पूरी तरह से सिद्धांत में स्थित है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं और मेरा कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना, एक निष्ठ भाव है। दूसरा, भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तत्पर रहता है, लगा रहता है भक्ति में, ऐसा नहीं कि आज भक्त हुआ कृष्ण का, कल हुआ शिव जी का, परसों हुआ दुर्गा जी का, ये भाव नहीं है। ये स्पष्ट रूप से हमने जो आचार्य कमेंट्री में पढ़ा वो यहां भी आ रहा है, सच्चा भक्त है वो। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात कोई भी ये वस्तुएं एकत्रित करके प्रेम भाव से भगवान को दे सकता है। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो, ठीक है, ये बात हमने भी थोड़ी देर पहले चर्चा किया, सच्चा भक्त। शुद्ध भक्त का अर्थ यह है कि भगवान की सेवा को छोड़ता नहीं है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहां स्थित है, यह क्या है मतलब स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं है, और कौन से शहर में रह रहा है, कहां पे रह रहा है, गांव में रह रहा है, शहर में रह रहा है, जंगल में रह रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं, अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं, कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। ये एकदम जो आचार्य की कमेंट्री में चर्चा किया तो वही चल रहा है। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं। तू भी वे अपने भक्त की भेंट तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। कृष्ण भावनामृत विकसित करना, इसको थोड़ा समझा देता हूं मैं। देखिए, इस जगत में कोई व्यक्ति कह सकता है भगवान तो सबको खिला रहे हैं, तो भगवान को देने की क्या जरूरत है। हमें समझ में आना चाहिए कि हम केवल जरूरत देख के नहीं देते हैं। अगर ऐसा होता तो सारे गरीबों के लड़कों को हम खाना खिला रहे होते। हम लोग अपने बच्चे को खूब खिलाते हैं, नए नए कपड़े लेके आते हैं, पत्नी के लिए सामान लाते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं। क्यों? जरूरत देख के नहीं अपितु संबंध देख के करते हैं। और व्यक्ति 24 घंटा सोचता ही रहता है उनके बारे में। तो अब ये विचार कीजिए, इस जगत में जो कोई हमको खिलाता है, कुछ गिफ्ट देता है, तो हम उसको देते हैं ना, तो संबंध के कारण देते हैं, ये तो न्याय है। उसी प्रकार से भगवान जब पूरे जगत को दे रहे हैं तो क्या हमें उनको नहीं देना चाहिए, अपितु भगवान को ही देना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, अब कोई कहेगा कि भगवान के पास तो पहले से सब कुछ है, तो फिर मैं उन्हें क्या दूंगा। तो दृष्टांत बहुत अच्छा है, गंगा जी को जब हम जल अर्पित करते हैं, लोग गंगा जी की पूजा करते हैं, गंगा जी का ही जल लेते हैं, घर से कोई जल नहीं लेके जाते हैं, गंगा जी का ही जल लेते हैं और गंगा जी को समर्पयामी समर्पण कर देते हैं। तो क्या गंगा जी का जल बढ़ गया उससे? जब गंगा जी से जल लिया तो क्या फिर गंगा जी का जल कम हो गया? दोनों ही परिस्थिति में हम देखते हैं कि गंगा जी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता भौतिक दृष्टि से, लेकिन फिर भी गंगा जी का स्वभाव है कि वो प्रसन्न हो जाती हैं और वो व्यक्ति गंगा जी का भक्त माना जाता है। ऐसे ही सूर्य की हम पूजा करते हैं, जो लोग सूर्य की पूजा करते हैं वो सूर्य को दीपक देते हैं। तो अब सूर्य को दीपक देना या जल देना, इससे सूर्य का क्या हो जाएगा? लेकिन सूर्यदेव का जो आशीर्वाद है उस व्यक्ति पे होता है। तो सूर्यदेव भी ये भावना करते हैं कि ये व्यक्ति मेरा भक्त है, मुझे सम्मान दे रहा है, मुझे प्रेम दे रहा है, अपनी श्रद्धा को मुझे समर्पित कर रहा है। तो उसी प्रकार से सब कुछ भगवान का है, हमारा शरीर, हम स्वयं भगवान के हैं, जो इतनी वस्तुएं हैं सब कुछ हमारी भगवान के द्वारा ही आई हैं। लेकिन जब हम भगवान को देते हैं श्रद्धा से, तो भगवान स्वीकार करते हैं, ये भगवान का स्वभाव है। और उसके बदले में भगवान हमको अमरत्व देते हैं। अब थोड़ा हम विचार करेंगे कि श्रद्धा का अर्थ क्या है या प्रेम का अर्थ क्या है। श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर में बड़ा सुंदर बताते हैं, एक्चुअली बोलते बोलते प्रभुपाद उसे रोने भी लगते हैं। वो कहते हैं कि भगवान के सामने केवल हमें यही प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान, ये सारी वस्तुएं मैं लेके आया हूं आपके पास, ये आपके द्वारा ही मुझे प्रदत्त हैं, आपने ही मुझे सब कुछ दिया है, और मैं बहुत निकृष्ट हूं, मैं बहुत अधम हूं, मैं क्या लेके आ सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पास लेके आया हूं, आप कृपया उसको स्वीकार कर लीजिए। ये भावना से बोलते बोलते प्रभुपाद जी गदगद हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तो ये भावना अगर हमारी रहे कि मैं भगवान आपको क्या दे सकता हूं, फिर भी आपका आदेश है और मैं चाहता हूं आपको कुछ देना, तो कुछ सुंदर से वस्तु बनाकर भगवान के पास लेके आए, तो भगवान स्वीकार करते हैं। इस संबंध में एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, पूतना की। जब पूतना का वध हो जाता है भगवान के द्वारा, तो भगवान आचार्य समझाते हैं इस संबंध में कि जब पूतना जहर लेकर आई थी तब भगवान ने स्वीकार, भगवान को मारने के लिए आई थी तब भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो फिर कोई व्यक्ति अगर उदासीन भाव से भी दे, मान लीजिए भक्ति कर रहा है, साधना भक्ति कर रहा है, बहुत प्रेम नहीं है, लेकिन ये श्रद्धा है कि भगवान स्वीकार करते हैं, तो ऐसे देगा तो भगवान क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। और अगर इस भावना से करे कि नहीं, भगवान को संतुष्टि होगी, भगवान को अच्छा लगेगा, मैं अच्छे से मना के दूं, तब तो भगवान कितना उसको कितना अच्छे से मतलब उसको आस्वादन करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि भगवान तो बस थोड़ा सा भाव देख रहे हैं कि हमारा भाव होना चाहिए। अब इसमें एक और बात है, बहुत सारे पॉइंट्स है इस पे बोलने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। एक बात यह कि हमको ये भी सोचना चाहिए कि हमारे पास तो कोई भक्ति है नहीं, हाँ, लेकिन अगर मैं तुलसी का पत्र रखता हूं तो मेरी वजह से नहीं, लेकिन भगवान तुलसी का पत्र देख करके इसको स्वीकार कर लेते हैं, एक बात। दूसरा, वास्तविक रूप से जब हम लोग ऑल्टर की स्थापना करते हैं तो आचार्यगण, शिला प्रभुपाद, फिर उनके गुरु महाराज, फिर उनके गुरु महाराज, ऐसे करके, तो वस्तुतः हमारे गुरु महाराज रहते हैं, उनका फोटो रहता है, तो वस्तुतः हम जब भोग लगाते हैं तो पहले हम उनके हाथ में दे रहे होते हैं, भावना ये होती है कि मैं तो केवल उनका एक सेवक हूं और उनके द्वारा भगवान की सेवा में नियोजित किया जा रहा हूं। तो मैं गुरु महाराज को दे रहा हूं और गुरु महाराज प्रभुपाद को देंगे और प्रभुपाद अपने गुरु महाराज को देंगे, ऐसे करके परंपरा के द्वारा भगवान को भोग स्वीकार किया जाएगा। मेरे पास तो कोई भक्ति है नहीं, ये बात अगर ये भावना से दें तो बहुत अच्छा रहता है। एक और चीज प्रभुपाद अपने लेक्चर में समझाते हैं कि जब हम भगवान का भोग बनाते हैं तो हम विधि विधानों का पालन करते हैं। इस चीज को हमने पहले भी चर्चा किया था आचार्य की कमेंट्री में, शुद्धता रखना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा हम सचेत हो जाते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण के लिए बन रहा है। जैसे हम उसको चखते नहीं है और उनके भगवान के बर्तन अलग रखते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग सचेत रहते हैं कि ये भगवान के लिए बन रहा है। तो ये भी श्रद्धा का सूचक है कि हमें विश्वास है कि भगवान खाते हैं। ऐसा नहीं कि बस एक मूर्ति है, फोटो है, इसे क्या फर्क पड़ेगा, इसे क्या दिखाई पड़ेगा, ऐसे करके। तो इस प्रकार से जब भक्त बनाता है भक्ति के द्वारा, इस भक्ति के ही लक्षण है। उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा आपको। जब व्यक्ति करता है तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। और जिस भी भक्ति के स्तर पे हम हो वैसे शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे करके भगवान की कृपा से भक्ति हमारी बढ़ती चली जाएगी। तो ये समझ में आ गया होगा कि भगवान आ तो संतुष्ट हैं, फिर भी वो अपने भक्तों के द्वारा दी गई वस्तु को क्यों स्वीकार करते हैं। श्रील प्रभुपाद इस संबंध में एक और उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बहुत धनी व्यक्ति है तो उसका बेटा यदि उसको एक लॉलीपॉप लाके देता है जो पिता स्वयं ही लाके घर में रखा है, कोई चॉकलेट वापस लाके देता है कि पिताजी आप भी खाइए, तो पिताजी भले ना खाए लेकिन वो खुश जरूर हो जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान, ये हमें समझ में आना चाहिए कि भगवान खाते हैं, आंखों से देख के भी खाते हैं, लेकिन भगवान केवल यही देख रहे हैं कि जीवात्मा मेरे लिए कुछ लेके आया है, भले ही वो वस्तुएं पहले से ही हैं और भगवान के द्वारा दी गई हैं। तो ये हमारे प्रेम को स्वीकार करने का तरीका है। कृष्ण भावना अमृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। चरम बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। चरम का अर्थ है सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य यही है, और बाकी सारे जितने लक्ष्य हैं वो लक्ष्य नहीं अपितु लक्ष्य से भ्रमित करने के कारण है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख दो बार यह घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। किसी अन्य शर्त से यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने के तैयार नहीं होते। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि और कोई योग्यता नहीं देखते हैं भगवान, केवल ये देख रहे हैं कि क्या ये व्यक्ति भक्त है या नहीं है। बाह्य दृष्टि से वो कितना श्रेष्ठ है उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे स्त्री हो, चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, भगवान श्री कृष्ण का भक्त होना चाहिए। भक्ति ही मूल सिद्धांत है जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते, क्योंकि भगवान स्वराट हैं, हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। भक्ति कभी हेतु की नहीं होती, यह शाश्वत विधि है, यह पर ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। हेतु की का अर्थ ऐसा नहीं कि कोई कर्म करे, कोई ज्ञान का प्रयास करे, इसके द्वारा भक्ति का निर्माण होता है। ये तो खाली गहरा विषय है कि भक्ति हमारा शाश्वत संबंध है भगवान कृष्ण से। फिर वही पॉइंट कि जो समझता है कि मैं भगवान का शाश्वत दास हूं, इस भावना से लगातार भगवान की सेवा में लगा रहता है, ये सच्चा भक्त है। तो ये और ये शाश्वत विधि है। ये भी इंटरेस्टिंग है कि एक बार हमने भक्ति करना शुरू कर दिया तो फिर इसका जब तक हम पूर्णावस्था को प्राप्त नहीं होते तब तक ये रुकने वाली नहीं है। और दूसरा अर्थ ये भी है कि भक्ति हमारे हृदय में पहले से ही है। जब हम श्रवण आदि विधियों का पालन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट श्रवण, तो ये अपने आप प्रकट हो जाती है। यह यानी कि भक्ति करने से ही भक्ति प्रकट होती है, और श्रवण की विधि तो भक्ति ही है ना। तो इसके अलावा आप कुछ करोगे तो भक्ति प्रकट होगी, ऐसा नहीं होगा। भगवान की भक्ति करेंगे, साधना भक्ति करेंगे, तो उसी से प्रेमा भक्ति का उदय होता है, किसी और कर्म से नहीं। और दूसरा बात है कि भक्ति का अर्थ ये नहीं कि खाली भाव लेकर ही घूमते रहे। प्रभुपाद यहां स्पष्ट बोल रहे हैं प्रत्यक्ष कर्म, यानी कि हमें कुछ कार्य करना होगा अपनी वाणी से, अपने मन से, अपने वचन से, ऐसे करके। यह बतलाकर कि वे ही एकमात्र भोक्ता, आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं। अब भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है। यदि हमें किसी से प्रेम होगा तो हम ये जानना चाहेंगे उसे क्या पसंद है और उसके अनुरूप ही उसको कुछ समर्पित करेंगे। तो इसलिए हम तो जानते नहीं भगवान के बारे में, तो इसलिए भगवान स्वयं ही बता रहे हैं कि उन्हें क्या कुछ पसंद है। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। तो और ये भगवदगीता के द्वारा मालूम चलता है। गुरु के मार्गदर्शन में जब हम भगवदगीता पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा ना हो या उन्होंने ना मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस मछली तथा अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए और प्याज लहसुन भी, क्योंकि वो तमोगुण रजोगुण में होते हैं। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे इनका उल्लेख करते। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र पुष्प जल तथा फल अर्पित किए जाएं और वे इन्हें स्वीकार करेंगे। सिंपल सी बात है, जगत में भी अगर आपको कोई ऐसी वस्तु देता है जो आपको अच्छी नहीं लगती तो आप कहते हैं नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो उसी प्रकार से भगवान भी एक व्यक्ति हैं और वो स्पष्ट बोल रहे हैं कि वो किस चीज को स्वीकार करेंगे। तो यानी अगर हम भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, भक्ति है, तो फिर वही वस्तु वे देंगे जिससे भगवान संतुष्ट होते हैं। शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल, ये सब मनुष्यों के उचित भोजन हैं और भगवान कृष्ण ने भी उन्हीं का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हों वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे इसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेम भक्ति नहीं कर सकेंगे। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, न कि हम अपने को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। ये प्रेम नहीं होता, ये काम कहलाता है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा थारी बोले काम, उसको काम बोलते हैं। हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना चाहते हैं तो ये काम है। तो यहाँ पे भगवान स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि उन्हें क्या अच्छा लगता है और वो है वेजिटेरियन चीजें और उसमें भी प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उच्चिष्ट ही शुद्ध होता है। यज्ञ शिष्टा सुनो संतो मुच्यन्ते सर्व कर्म भी। अतः जो लोग जीवन में प्रगति करने तथा वह बंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं उन्हें इसी को खाना चाहिए, यानी भगवान के प्रसाद को। और जीवन में प्रगति करने का अर्थ ये नहीं है कि घर में हम सोफा सेट ले आए या टीवी ले आए। जीवन में प्रगति करने का अर्थ है अपनी चेतना में हम अग्रसर हों, भगवान को और अधिक जाने। तो इसके लिए भगवान का प्रसाद बहुत श्रेष्ठ चीज है। उसी श्लोक में वे यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते वे पाप भक्षण करते हैं, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कौर इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है, बहुत जबरदस्त। हर कौर जो भगवान को अर्पित नहीं है, जो हम भोजन कर रहे हैं उससे इस जगत में और बंध जाते हैं। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। प्रभुपाद ने अपने पहले के तात्पर्य में इसको कोट किया है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। सत्व का मतलब होता है अंतःकरण, हमारा चित्त, हमारा मन। तो अगर हमारा आहार कृष्णमय होगा, भगवान का प्रसाद होगा, तो हमारा चित्त का भी निर्माण कृष्णमय ही हो जाएगा। तो इसलिए ये भगवान का प्रसाद ग्रहण करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली 11वें स्कंद में आता है कि भगवान का प्रसाद ग्रहण करने मात्र से व्यक्ति माया से मुक्त हो जाता है। और एक और जगह आता है कि भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से एक कौर से करोड़ों यज्ञों का लाभ मिलता है। जो एक महीने का फास्टिंग करता है उतना लाभ एक कौर प्रसाद खाने से होता है। तो बड़ा लाभ है, लेकिन नहीं समझ पाने के कारण लोग भगवान को अर्पित नहीं करते हैं। तो भगवान अपनी तरफ से तो बहुत लाभ देने के लिए जुटे पड़े हैं, लेकिन हम लोग लाभ लेना नहीं चाहते अज्ञान के कारण। तो हम भगवान के बारे में चिंतन तभी कर पाएंगे जब हमारा चित्त शुद्ध होगा। आज भी हम भागवत क्लास में सुन रहे थे कि अगर चित्त में पाप वास करता है, पाप वासना है, तो भगवान का चिंतन नहीं कर सकते। तो ये सब जो है भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से हृदय के पाप नष्ट होते हैं और भगवान की तरफ चित्त उन्मुख होता है। तो खाना बहुत बड़ी बात है। इंग्लिश में बोलते हैं यू आर वॉट यू ईट, आप वो हो जो आप खाते हो। तो इस कारण से हमें बहुत सतर्क होना चाहिए और भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि उनके पास सब कुछ है, किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में सबसे मुख्य बात रहती है वह है कृष्ण के प्रेम वश कार्य कर्म करना। इस संबंध में शिला प्रभुपाद बड़ा अच्छा बात बताते थे कि भगवान एक साधारण से भोग को भी स्वीकार करेंगे अगर जो बनाने वाला है वो स्वच्छ है और किचन स्वच्छ है और अगर किचन गंदा है और बनाने वाला गंदा है तो भगवान ऐसे भोग को स्वीकार नहीं करते। इस चीज को हमने आचार्यों की कमेंट्री से भी देखा था, शुद्धता का बहुत विचार है। तो इसलिए बाजारों के बने हुए खाने को अर्पित करना बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि उन लोगों की बिल्कुल चेतना नहीं होती कि कृष्ण के लिए बन रहा है। तो बेस्ट है कि अपने घर में ही व्यक्ति खाना बनाए और शुद्धता से बनाए और भगवान को समर्पित करे। इस संबंध में कोई प्रभुपाद जी जो कि अपने लेक्चर बोलते हैं कि कोई व्यक्ति कहते हैं, स्पेशली आर्य समाजी लोग, अरे तुम्हें कैसे पता कि भगवान स्वीकार कर रहे हैं, तुमने तो देखा नहीं है। देखने पे वाला बड़ा विश्वास करते हैं वो लोग। तो प्रभुपाद बोलते हैं बड़ा स्पष्ट कि देखिए मैं तो मूर्ख व्यक्ति हूं, लेकिन गुरु महाराज बोल रहे हैं और भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं, तो मैं तो उनकी बातें विश्वास करूंगा। आप तो तीसरे व्यक्ति हो, आप किस आधार पर बोल रहे हो कि भगवान स्वीकार नहीं करते, तो मैं आपकी बात को स्वीकार नहीं करूंगा। तो ये सब श्रद्धा का लक्षण है। श्रद्धा अर्थात शास्त्रीय श्रद्धा, लौकिक श्रद्धा, देखने पे विश्वास करने वाली श्रद्धा, ये कोई बहुत तगड़ी श्रद्धा नहीं है और इसका कोई आधार भी नहीं है। क्योंकि हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है और हम ये समझ नहीं पाते हैं कि भगवान के सामने कुछ भोग लेके आते हैं तो भगवान देख करके कैसे खा लेते हैं। तो इसलिए देखने पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। वे मायावादी चिंतक भगवद गीता के श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे जो ये मानकर चलते हैं कि परब्रह्म इंद्रिय रहित है। यानी जो व्यक्ति परब्रह्म को, भगवान को एक व्यक्ति नहीं मानता, वो कभी समझेगा नहीं और वही समझ ही नहीं पाएगा कि भगवान ये चीज क्यों पसंद कर रहे हैं, वो चीज क्यों पसंद नहीं कर रहे। इसीलिए ऐसे लोग टीका को हम पढ़ करके कभी समझ नहीं पाएंगे भगवान के बारे में। उनके लिए यह तो एक रूपक है, यानी कि एक एनालॉजी टाइप की है, सच में नहीं भगवान खाते ऐसा वो सोचते हैं वो लोग। या भगवद गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है, अर्थात भगवान एक व्यक्ति है, मनुष्य की तरह, तो उसके खाते हैं, अब कहां है जो खाएंगे, ऐसा करके वो सोचते हैं। किंतु वास्तविकता तो यह है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त हैं और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील हैं। मैंने इसको समझाया था कि भगवान आंख से भी खा सकते हैं और अपने हाथ से भी खा सकते हैं, ये चीज ब्रह्म संहिता से सुनते हैं। दूसरे शब्दों में एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का कार्य कर सकती है। कृष्ण को परम ब्रह्म कहने का आशय यही है। इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्य से युक्त नहीं माना जा सकता, कि जब हमारी इंद्रियां हैं तो परब्रह्म की इंद्रियां नहीं होंगी तो परब्रह्म तो हमसे कम हो गए ना। इसलिए सिंपल सी बात है, इसलिए हमारी इंद्रियां हैं तो भगवान की इंद्रियां भी हैं। सातवें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं, इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके करते हैं। यहां प्रभुपाद इसको दे रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से गर्भ में, मां के गर्भ में एक मनुष्य गर्भाधान करता है, उस तरह से भगवान को आवश्यकता नहीं है। भगवान ने केवल देखा और सृष्टि में जीवात्माओं का गर्भाधान हो गया। तो भगवान की आंख में भी गर्भाधान करने की शक्ति है और जो शक्ति हमारे पास नहीं है। तो इसी से समझ में आना चाहिए कि अपनी असमर्थता को भगवान के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। तो उसी प्रकार से अतः यहां पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के ही समरूप है। इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने तथा स्वाद ग्रहण करने के ही समरूप है। केवल भक्त ही बिना तर्क के यह समझ सकता है कि परब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं। और इस संबंध में चैतन्य चरितामृत में आता है कि राघव पंडित जब भगवान को भोग लगाते थे तो कभी कभी भगवान वाकई मतलब खा करके उसको कम भी कर दिया करते थे, तो उससे उनके चित्त में बहुत प्रसन्नता होती थी और उनकी श्रद्धा बहुत बढ़ जाती थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। तो हम भक्तों को समझ में आना चाहिए, भगवद गीता से सुन करके विश्वास होना चाहिए कि भगवान खाते हैं, और नम्रता के संग भगवान को समर्पित करना चाहिए और हमेशा ही समर्पित करना चाहिए, सच्चा भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, तो फिर भगवान निश्चित रूप से हमारे भोग को स्वीकार करते हैं। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बड़ा स्पष्ट बोलते हैं कि आप भगवान के फोटो के सामने जब कुछ भोग सामग्री लेके जाते हो तो उस पर अगर तुलसी रहती है तो निश्चिंत हो जाना चाहिए कि भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो खैर इस पर काफी कुछ बोला जा सकता है, लेकिन हमने जितना हमारे पास समय था उस पर हमने बोला। उम्मीद है कि आप लोग घर में भोग लगाएंगे इस श्लोक को सुन करके। हरे कृष्णा।